ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ದೀನ ಬಂಧು ಜಗತ್ಪದೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮಸ್ತೆ ಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಪ್ರಣಾಮಿ ಹರಿತೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ರಾಧ ಶಿವಾಚಾರಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ. ತೊ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಜವಾಸಿಯೋ जब गोवर्धन की पूजा करने के लिए कहा तो ब्रजवासियों ने उनकी बात मानी, क्योंकि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति इतना स्नेह था और इंद्र की परवाह न करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण के आदेशानुसार विधिवत गोवर्धन की पूजा करना आरंभ किया, ठीक वैसे कि जैसे श्री कृष्ण ने बताया था. और उस समय एक बहुत अद्भुत घटना हुई जिसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से करते हैं. भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरे ब्रजवासी भक्तों ने बहुत बड़ा खतरा अपने आप ले लिया है, रिस्क लिया है. खतरा क्या है कि इंद्रदेव से टक्कर लिया है इन्होंने. अब इंद्रदेव तो क्रोधित होने ही वाले हैं, लेकिन केवल मेरे कहने पर इन्होंने इंद्रदेव की पूजा बंद करके गोवर्धन की पूजा की है, तो शायद इनके मन में कोई भय हो, कोई संशय हो, कोई हिचकिचाहट हो, कोई संकोच हो कि अब क्या होगा. तो इस संकोच या इस भय को भगवान मिटाना चाहते थे, उनको प्रोत्साहन और साहस दिलाना चाहते थे और विश्वास दिलाना चाहते थे कि जो आपने कार्य किया है वो सही किया है और इसमें कोई डरने की बात नहीं है. जैसे मैंने कहा है आपने वैसे किया है, तो आप सुरक्षित हैं, विश्वास कीजिए. भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. हे अर्जुन, अन्य धर्मों को त्याग के केवल मेरे शरण में आना, माम एकम. भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने का मतलब है कि केवल उनके बात को मानना, उनके आदेश का पालन करना, उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करना. तो सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब है कि इंद्र की बात को भूल जाना, चंद्रदेव की बात को भूल जाना, इस बाबा की बात को भूल जाना, वो साधु की बात को भूल जाना, जो कृष्ण कहते हैं वो याद रखना, वो करना. तो ब्रजवासियों ने तो ठीक वैसे ही किया. इतने पीढ़ियों से, इतने सालों से इंद्रदेव की पूजा होती आ रही थी और अब यहां अचानक एक 7 साल के बालक आए श्री कृष्ण, जिन्होंने न जाने क्यों सारे ब्रजवासियों का हृदय जीत लिया. और ब्रजवासीगण इतने पुराने परंपरा को यूं ही बस बहुत आसानी से तोड़कर गोवर्धन की पूजा करने लगे, तो कृष्ण भगवान उनका हौसला बढ़ाना चाहते थे और यह भी साबित करके दिखाना चाहते थे कि मेरे शरण में आने से कभी भी किसी को डर नहीं होगा. तो इसलिए श्री कृष्ण ने एक बहुत अद्भुत लीला वहां पर की. क्या लीला की, ये दसवें स्कंध के 24वें अध्याय के 35वें श्लोक में शुकदेव गोस्वामी इस प्रकार वर्णन करते हैं। यहाँ जो श्लोक है इसको हम पढ़ेंगे। कृष्णस्त्वन्यतमां रूपम् कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम् गोपविश्रम्भणं गतः शैलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिं माद बृहत् वपुः। कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम् गोपविश्रम्भणं गतः शैलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिं माद बृहत् वपुः। कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम् गोपविश्रम्भणं गतः शैलोऽस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिं माद बृहत् वपुः। श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए अभूतपूर्व विराट रूप धारण कर लिया और यह घोषणा करते हुए कि मैं गोवर्धन पर्वत हूं प्रचुर भेंट खाली। तो जब शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि सारे ब्रजवासियों ने परिक्रमा कर ली तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि चलो अब गोप विश्रम्भणम् गोपों के गोप गोपियों के साहस को और श्रद्धा को सुदृढ़ करने के लिए मुझे एक रूप धारण करना होगा। तो उन्हें कृष्ण अर्थात कृष्ण ने तू मतलब तत्पश्चात अन्यतमम एक दूसरा रूपम एक रूप गतः धारण किया। और किस तरह का रूप था ये? बृहत् वपुः। वपुः मतलब शरीर, बृहत् मतलब बहुत बड़ा। तो भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों का हौसला बढ़ाने के लिए एक विराट रूप धारण किया। और ये रूप कहाँ था? ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर था और उस रूप को धारण करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शैलोस्मि, शैल अस्मि, मैं पर्वत हूं, मैं गोवर्धन हूं। और ऐसा करके ब्रुवन, ऐसा कह के भूरि बलिम आगत, फिर जितने भी सामग्री, जितना भी भोग वह रखा था उन्होंने खा लिया। तो भगवान ने जब ये अद्भुत रूप धारण किया तो ये दूसरे रूप जो है वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थित थे। तो वही गोवर्धन पर्वत के एक चलते फिरते रूप थे। गोवर्धन तो एक पर्वत है इसलिए उसे अचल कहते हैं, द्रोणाचल। द्रोणाचल जैसे द्रोण नाम का पर्वत, अचल मतलब पर्वत, तो चलता नहीं है। परंतु ये जो रूप है जो कि श्री कृष्ण ने इस समय प्रकट किया था, जो कि गोवर्धन का ही रूप है, जो कि श्री कृष्ण से अभिन्न था, वो इस अचल रूप के ऊपर स्थित था और वो चलता फिरता हुआ रूप था। एक पर्वत का रूप तो आपने देखा है, त्रिकोण आकार होता है, एक पर्वत होता है। परंतु ये पर्वत का व्यक्तित्व था, एक रूप था और वो प्रकट हो गया था वहां पर। और जब विशाल रूप यहां प्रकट हो गया गोवर्धन के ऊपर, तो 7 वर्ष के श्री कृष्ण अपने ग्वालबाल रूप में ही ब्रजवासियों के बीच में रहे। तो श्री कृष्ण ने अपने आप को विस्तार किया और गोवर्धन पर्वत के ऊपर अपने आप को विराट रूप में स्थित तो कर दिया, परंतु अपने ग्वालबाल रूप में जहां थे वहीं रहे। तो ये बिल्कुल एक विराट रूप, आश्चर्यचकित कर देने वाला था रूप, बहुत ही सुंदर और हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रकाशमान। और श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों से कहा, देखो देखो अहो पश्यत, देखो तो गोवर्धन, आपके भक्ति से आपने जो इतने सारे सामग्री अर्पण किए हैं गोवर्धन को, इन सब से गोवर्धन इतने प्रसन्न हुए हैं कि उन्होंने ये रूप धारण कर लिया है और आपकी सामग्री को स्वीकार, आपकी भेंटों को स्वीकार करने के लिए अब सामने आए हैं। कि गोवर्धन एक व्यक्ति के रूप में आपके ऊपर कृपा बरसाने के लिए आए हैं। देखो वैसे तो गोवर्धन अचल है, चलता फिरता नहीं है, स्थिर होता है, लेकिन ये गोवर्धन का रूप देखो हिल रहा है, एक व्यक्ति के रूप में है। इसके सुंदर दांत देखो मोतियों की तरह हैं और ऐसे लग रहे हैं जैसे अचल पर्वत के ऊपर ये कोई किरीट है। और साथ साथ इसका सुंदर मुखारविंद देखो, इतना बड़ा मुख है, एक गहरे गुफे की तरह है, परंतु फिर भी जो मुख है इस व्यक्ति का बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। ये जो अचल गोवर्धन पर्वत है इसके शरीर के ऊपर तो पत्थर पत्थर सब जगह होते हैं, परंतु ये जो रूप है जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थित है, गोवर्धन का ही रूप, इसका रूप कितना मधुर है, कितना सुंदर है। वैसे अचल रूप जो गोवर्धन का है पर्वत रूप, उसकी भुजाएं तो वृक्ष हैं, परंतु इस गोवर्धन के जो भुजाएं हैं वो हमारे जैसे भुजाएं हैं, बहुत लंबी हैं, लेकिन बहुत मजबूत हैं, महाबाहो, और तरह तरह के आभूषणों से सुसज्जित है, रत्नों के बाजूबंद हैं और तरह तरह के अन्य आभूषण हैं। और देखो तो सही किस प्रकार से अब गोवर्धन आपके ऊपर, हम सबके ऊपर कृपा बरसाने के लिए इस रूप, ये रूप को धारण कर चुके हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने ये विशाल रूप धारण कर लिया। सारे ब्रजवासीगण आश्चर्यचकित होकर देखने लगे और मन ही मन में वो सब सोचने लगे, कृष्ण ही गोवर्धन है, कृष्ण ही पर्वत बन गया। इस प्रकार से उनके मन में श्रद्धा बहुत मजबूत हो गई कि अब कोई डरने की बात नहीं है, इंद्र के क्रोध से या किसी भी देवता के क्रोध से अब डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं वो पर्वत गोवर्धन बन गए। इससे हम समझ सकते हैं कि गोवर्धन पर्वत स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, भगवान के अवतार माने जाते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से कहा है कि कभी भी आप गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़ना नहीं, क्योंकि ये श्री कृष्ण का रूप है और भगवान के ऊपर चरण नहीं, हमारे पैर नहीं डालने चाहिए। और उसके बाद जितने भी गौड़ वैष्णव हैं वो ऊपर चढ़ते नहीं हैं। जब चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन गए थे, ब्रजभूमि में आए जगन्नाथपुरी से, तो गोवर्धन की परिक्रमा उन्होंने की, लेकिन उनके मन में यह संशय था या यह भय था कि गोपाल जी ऊपर गोवर्धन के स्थित है। आपको याद होगा कि कई साल पहले चैतन्य महाप्रभु के गोवर्धन आने के पहले उनके परम गुरु श्री माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी की इच्छा के अनुसार उनकी मूर्ति गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित की थी। हमें कह सकते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमें नहीं जाना चाहिए ऊपर, तो माधवेंद्र पुरी क्यों गए? आप में से कौन बताएं? चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन का रूप धारण किया था गोवर्धन पूजा के समय 5000 वर्ष पूर्व, लेकिन उनके परम गुरु जो कि शुद्ध भक्त थे वो तो ऊपर चले क्यों? क्योंकि गोपाल जी ने ही उन्हें कहा था करने के लिए, तो भगवान के आदेश का ही पालन उन्होंने किया। ये माधवेंद्र पुरी थक के बैठे थे गोविंद कुंड के पास, जहां उनकी बैठक है, वो आश्रम विराज है वहां गोविंद कुंड के पास। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक ग्वालबाल के रूप में आकर माधवेंद्र पुरी को दूध पिलाया और कहा कि बाबा जी, लग रहा है कि आप उपवास कर रहे हैं, तो यहाँ गांव की महिलाओं ने हमें भेजा है, ये देखा कि कोई बाबा यहाँ पर भूखे हैं, तो हम जाओ उनको देकर कि दूध लेकर आ जाओ। तो हम दूध देने आए हैं। अरे बेटा, लेकिन तुमको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूँ? वो यहाँ के गांव के माताओं ने बताया कि ऐसे कोई बाबा जी आए हैं, हम दे दो, हमारे गाँव में कोई भूखा नहीं रहता, इसलिए मैं आया हूँ और आप ये ले लो और दूध पीके फिर मैं थोड़ी देर में इस पात्र को वापस लेने आता हूँ। और एक क्षण के अंदर वो बच्चा ओझल हो गया। माधवेंद्र पुरी देख रहे तो ऊपर सर उठाए तो देखा कि बच्चा गायब। अरे कैसे चला गया, बच्चा कहाँ चला गया अचानक? खैर कोई बात नहीं, चलो दूध पी लेते हैं। और जब दूध पिया तो ये अमृत था, साक्षात अमृत। और फिर वो सोचने लगे कि बहुत स्वादिष्ट, बच्चा आया नहीं, आया नहीं। फिर थके हुए थे, बैठे बैठे फिर थोड़ी नींद आ गई और बैठे ही सब सो गए, तो फिर सपने में गोपाल जी आए और गोपाल जी कहने लगे, अरे देखो माधवेंद्र पुरी, मैं अनेक वर्षों से यह झाड़ियों में छुपा हुआ हूं, मुगलों के आक्रमण के समय यहाँ के पुजारियों ने, मेरे भक्तों ने मुझे यहाँ छुपा के रखा था, लेकिन उसके बाद अनेक वर्ष हुए हैं, ठंडी के समय में, गर्मी के समय में, वर्षा के समय में मैं यहाँ पर हूँ, बहुत कठिनाई हो रही है मुझे, और फिर यह कांटे वगैरह है झाड़ियों के बीच में, उससे भी मेरे शरीर में कष्ट पहुँच रहा है, तो यहाँ से मुझे निकालो और गोवर्धन के ऊपर स्थापित कर दो। तो माधवेंद्र पुरी को पता चली कि अरे ये जो बच्चा मेरे पास कल आया था वो तो गोपाल था, कृष्ण था, और मैंने पहचाना नहीं, तो भाव विभोर होकर श्री कृष्ण वहीं पर पड़े, माधवेंद्र पुरी वहीं पर फिर बैठे रहे, लेकिन सोचा कि नहीं, मेरे भाव के लिए, मेरे आनंद के लिए कोई समय नहीं है, अब भगवान के आदेश का पालन करना है। तो ये भक्त के लक्षण होते हैं कि भक्त अपने सुख दुख की चिंता न करते हुए वो भगवान के आदेश का पालन करने में उत्सुक होते हैं। दुख की बात तो दूर है, अपने सुख की भी चिंता नहीं करते। कठिनाई के समय भगवान की भक्ति, भगवान की आदेश का पालन, आदेश का पालन करना, ये तो भक्त के लक्षण होते ही है। लेकिन जब सुख पाने की भी अवस्था है, वो भी आध्यात्मिक सुख पाने की का अवसर मिल रहा है, और भगवान के आदेश पाने पर उस आध्यात्मिक सुख को भी त्यागना भगवान के आदेश का पालन करने के लिए, ये सच्चा भक्त है। तो माधवेंद्रपुरी ने अपने आनंद को त्याग दिया भगवान की सेवा के लिए, और तुरंत ब्रजवासियों को बुलाकर झाड़ियों से काट कूट कर सब वहां देखा कि ठीक उसी जगह गोपाल जी की मूर्ति है। फिर बड़े धूमधाम से प्राण प्रतिष्ठा हुई गोवर्धन पर्वत के ऊपर। तो माधवेंद्रपुरी तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर चढ़े, परंतु गोपाल जी की इच्छा थी इसलिए वो चढ़े। लेकिन माधवेंद्रपुरी के बाद फिर जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने देखा कि नहीं, यहां चढ़ना, अगर मैं चढ़ूंगा तो सभी लोग चढ़ना शुरू करेंगे मेरे बाद, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ऊपर नहीं चढ़े। वो देख रहे थे कि गोपाल जी का दर्शन कैसे होगा, मुझे मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा। तो गोपाल जी को यह पता चला कि महाप्रभु वहां पर आए हैं और दर्शन देना चाहते हैं, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ेंगे पर्वत के। तो उन्होंने एक खेल खेला, उन्होंने एक अफवाह फैला दी। क्या अफवाह फैलाई? अरे यवन आ गए, तुर्की लोग आ गए, सैनिक आ गए, तो हाहाकार मच गया। तो वहां के ब्रजवासियों ने तुरंत गोपाल जी को लिया वहां से, गोवर्धन के ऊपर से, और एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव लेते गए, ताकि जो यवन सैनिक है वो उनको ढूंढ नहीं पाए। अंततः वो गांधुली ग्राम में गए। गांधुली एक गांव का नाम है, गांधुली, जहां राधा और कृष्ण ने अपने कपड़ों की गांठ बांधी थी। विवाह के तरह होता है ना, गांठ बांधते हैं। तो ऐसे गांव में जब राधा और कृष्ण ने अपने वस्त्रों के ऊपरी वस्त्रों की गांठ बांधी थी और फिर खोली थी, तो वो गांधुली है, गांधुली ग्राम। तो वहां पर गोपाल जी विराजमान थे। तो महाप्रभु ने खबर सुनी कि गोपाल जी ऊपर नहीं है, गांधुली में है, तो जाके उन्होंने दर्शन कर लिए, जीव भर के दर्शन किया। और फिर सबको पता चल गया, अरे ये तो अफवाह है, तो कोई यवन लोग नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे, चलो गोपाल जी को फिर चले जाओ। तब तक महाप्रभु ने दर्शन कर लिया। ठीक ऐसा ही हुआ जबकि रूप गोस्वामी और अन्य वृंदावन के वैष्णव उनके साथ में जब आए थे, वो भी नहीं सोच रहे थे कि हम नहीं जा पाएंगे, लेकिन उस समय भी ऐसे ही अफवाह फैल गया और भगवान गोपाल जी गांधुली ग्राम में आए। तो रूप गोस्वामी आदि भक्तों ने बड़ी अच्छी तरह से भगवान का दर्शन वहां किया। तो खैर, कहने का मतलब है कि कृष्ण भक्त गोवर्धन पर्वत को कृष्ण का ही रूप मानते हैं, कृष्ण से अभिन्न मानते हैं। हाँ, गोवर्धन पर्वत कृष्ण का रूप होते हुए भी कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रकट हुए हैं। जैसे बलराम जी हैं, कृष्ण के रूप हैं, लेकिन कृष्ण की सेवा करने के लिए प्रकट हुए हैं। उसी प्रकार से गोवर्धन भगवान के रूप होते हुए भी वो हरिदास वज्र कहलाते हैं। सुखदेव गोस्वामी उनको कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में से वो सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे गोपियां कहती हैं आपस में। तो ये गोवर्धन की महानता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शैल अस्मि शैलोस्मि, मैं गोवर्धन पर्वत हूं। तो मुझ में और गोवर्धन में कोई अंतर नहीं है। और इससे श्री कृष्ण गोवर्धन का रूप धारण करके बताना चाह रहे थे कि मैं इस प्रांत का अधिष्ठाता देव हूं, आप सबने मुझे प्रसन्न किया है आपकी भक्ति से, आपने अनेक सामग्री मुझे अर्पण किए हैं, तो तो मैं उनको स्वीकार कर रहा हूं। और देखो गोपाल चप्पू में जीव गोस्वामी कहते हैं, तो गोवर्धन उनसे कहते हैं कि देखो अब मैं आपकी बलि जो है या आपके भोग जो है किस प्रकार से ग्रहण करूंगा। फिर यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूरी बलि आदत, भूरी मतलब बहुत ज्यादा बहुत सारे थे अन्नकूट, ये अन्नकूट उत्सव मनाते हैं ना गोवर्धन पूजा के समय। कूट मतलब क्या है, पर्वत, चित्रकूट, चित्रकूट भी पर्वत है, तो कूट मतलब पर्वत और अन्न मतलब अन्न अनाज। तो ब्रजवासियों ने तरह तरह के सामग्रियों के पर्वत बनाए पाता है, कूट अन्नकूट, कहीं ढेर सारा चावल बड़े 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 पर्वत, कहीं ढेर सारी पूरी के पर्वत, चपाती के रोटी के पर्वत, फिर तरह तरह के सब्जियां और अनेक व्यंजन, दूध के पदार्थ, कहीं खीर, कहीं कुछ, कहीं घी। ब्रजवासियों के पास तो धन था, गोधन, तो घी दूध आदि बहुत था, तो तरह तरह के व्यंजनों के उन्होंने पर्वत बनाए और वो सब रखे हुए थे गोवर्धन के सामने। तो फिर गोवर्धन ने क्या किया, गोवर्धन ने देखा कि अरे वाह इतने सारे सामग्री, और गोवर्धन फिर इन सामग्रियों को खाने लगे। कैसे, उनके जो दोनों हाथ थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे कि देखो हालांकि गोवर्धन पर्वत के हाथ जो है वो वृक्ष होते हैं, परंतु गोवर्धन का ये रूप जो है इसके दो हाथे हैं जो रत्न से सुशोभित हैं, और जो आगे कुछ खाना चाहते हैं, भोजन लेना चाहते हैं, तो इन भुजाओं से गोवर्धन पर्वत ने जितने भी सामग्री सामने भोग था वो सब एक एक कर खाने लगे। और फिर बीच बीच में खाते खाते उनको प्यास लग जाती, तो जितने भी गोवर्धन के आसपास कुंड है वहां से पानी पी लेते। तो ऐसे खाते पीते जो भोग चढ़ा था वो भी समाप्त होने को आया, उधर सारे कुंड भी सूख गए, और भगवान और भी खाए जा रहे थे खाए जा रहे थे। और जैसे गोवर्धन का हाथ सामने आए तो जो ब्रजवासी वहां खड़े थे वो दूर भाग जाते थे ताकि गोवर्धन के रास्ते में नहीं आए। गोवर्धन को खाना था, वहां कोई पदार्थ रखा था, डेढ़ किलोमीटर के इलाके में सारी सामग्री रखी हुई थी। सारे ब्रजवासियों जितने भी परिवार वहां थे सबों ने बहुत सब कुछ बनाया था। जैसे यहां भी मंदिरों में, हमारे इस्कॉन मंदिरों में जब गोवर्धन पूजा का उत्सव मनाया जाता है तो मंदिर में तो बनता ही है, परंतु हर घर से भक्त लोग कुछ न कुछ बना के लेके आते हैं। लेकिन अब कलयुग के 2000 वर्ष शुरू होने के, 7000 वर्ष, 2000 वर्ष शुरू होने के बाद ही इतना धन हम लोगों के पास नहीं है जितना कि गांव में रहने वाले ब्रजवासियों के पास था। तो उनके घरों से जितना अनाज था, जितना दूध था, जितनी घी थी, जितने तरकारी सब्जी वगैरह थे वो सब लाए और सबके विशाल पर्वत बनाए और गोवर्धन को अर्पण कर दिया। इसलिए हालांकि गोवर्धन खाए जा रहे थे लेकिन देर लग रहा था और साथ साथ पानी भी पिए जा रहे थे, सारे कुंड खाली, और ब्रजवासी इधर भाग रहे उधर भाग रहे और ला रहे। फिर गोवर्धन ने अपने दाहिने हाथ से खाना जारी रखा और बाएं हाथ से चुटकी मारी, अरियोर अरियोर और लाओ। तो सारे ब्रजवासी इधर उधर भाग रहे, कुछ किसी को लाए, किसी ने पूरी लाए, किसी ने हलवा लाया, किसी ने कुछ लाया, और गोवर्धन पर्वत थे शांत हो गए। ये भगवान के विशाल रूप जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर थे, गोवर्धन के ही रूप, वो सब खाए जा रहे थे। और फिर गोवर्धन थोड़े संतुष्ट हुए, उनका पेट थोड़ा बहुत भर गया, और फिर ब्रजवासियों ने सोचा कि भी गोवर्धन को हाथ में धोने के लिए जल कहाँ से लाए, तो बहुत दूर से जल लाना पड़ा। और फिर अपने हाथ धो लिए गोवर्धन ने, और फिर जल भी जलपान किया और मुंह धोना चाहा, मुंह धो के जब पानी बाहर निकाला तो वह जैसे वो पानी गिरा तो वहां तरह तरह की फसल हो गई, ऊपर सब सारी जमीन में सब जगह फसल फसल धर्म हो गया। और फिर गोवर्धन ने जितने भी बांबू के पेड़ थे वो खा लिए और दांतों की तरह इस्तेमाल करने लगे। और फिर दांतों जो है वो फेंक दिए और फिर ब्रजवासियों ने हजारों हजारों तांबूल पान भगवान को अर्पित किए। फिर भगवान या गोवर्धन के रूप में संतुष्ट हो गए और उनका चेहरा चमक रहा था, जैसे सुबह प्रातःकाल के समय सूर्य कैसे चमकता है वैसे उनका चेहरा चमकने लगा, जैसे भक्तों का चेहरा चमकता है प्रसाद लेने के बाद। प्रसाद लेने से पहले थोड़े चिंतित उदास होकर रहता है, प्रवचन में बैठते समय भी सभी लोगों का मन आधा प्रसाद के ऊपर रहता है, कब प्रवचन समाप्त होगा कब प्रसाद मिल जाएगा, तो उदास चेहरे जो है प्रवचन के समय प्रसाद के बाद देखिए कैसे हो बदल जाते हैं। हालांकि रात हो चुकी होती है फिर भी प्रसाद के बाद चेहरा संतुष्ट रहता है, तो गोवर्धन भी इस समय पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। बहुत सारा भोजन उन्होंने ले लिया। अभी उस गांव का नाम भी है अनियोर, अन्नकूट क्षेत्र है वहां, और अन्नकूट क्षेत्र से 1.5 किलोमीटर दूर जो है वो अनियोर गांव है। तो सारे क्षेत्र का प्रयोग ब्रजवासियों ने किया था भोग अर्पण करने के लिए। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि भगवान का विराट रूप जो अपने जितने भी हाथ थे वो सब इधर उधर चारों दिशाओं में घुमाकर इधर से उधर से इधर से ले रहे थे सब कुछ, यहाँ से जल लिया वहां से कुछ लिया वहां से कुछ लिया, और ऐसे अनेक थे जिन्होंने मन में अर्पण किया था वो भी उन्होंने ले लिया, वही ब्रजवासी देख नहीं पाए। अभी भोग तो चल गया गोवर्धन को, भोग के बाद क्या होता है, भगवान को भोग चढ़ाते हैं उसके बाद क्या होता है, आरती होती है ना, तो आरती उतारनी है, लेकिन अब इतना ऐसे घी का दीप मिले कहां से, इतने इतना बड़ा दीप चाहिए ना उसके लिए, तो कहां से मिले। तो ब्रजवासी थोड़े सोच रहे थे क्या किया जाए, फिर भगवान कृष्ण ने मतलब ग्वालबाल कृष्ण ने गोवर्धन कृष्ण ने बाल कृष्ण ने सोचा अपने मन में ही कल्पना करने से वो बड़े बड़े दीप वहां पे प्रकट हो गए, और उन दीपों में ऐसे दीप थे जिसमें हजारों वास वहां रह सकते थे। फिर उन दीपों से ब्रजवासियों ने गोवर्धन की आरती उतारी। यहाँ हम लोग जो मंदिरों में भगवान की आरती उतारते हैं जिस दीप से, वो तो बहुत छोटा है, लेकिन बड़ा दीप आपको देखना है तो आप गंगा जी यमुना जी की पूजा जब होती है वाराणसी में हरिद्वार में गंगा जी की पूजा, और वृंदावन में यमुना के तट पर केशी घाट पे होती है, तो आप देख सकते हैं विशाल वो दीप होते हैं, और वहां पकड़ने के लिए वो विशेष कोई कपड़े वगैरह बहुत कुछ देते हैं कि पकड़ा नहीं जाता, और बहुत भारी होता है, इतना भारी कि दो आगे लगते हैं पकड़ने के लिए उसे, और फिर पकड़ के वो आरती उतारी जाती है यमुना जी की या गंगा जी की, और इतना इतनी गर्मी और कभी डर लगता है कि आग लग जाए, तो विशाल ऐसे दीप होते हैं और इतनी सारी घी उसमें लग जाती है, इतने वाप होते हैं उसमें, लेकिन दिखने में बहुत शानदार। तो ये तो कलियुग के दीप है, तो भगवान के समय के दीप तो इतने बड़े थे कि कल्पना भी हम नहीं कर सकते। तो फिर आरती तो उतर गई भगवान की, सारे ब्रजवासी गण फिर बहुत संतुष्ट हुए। तो इसलिए आगे चल के सुखदेव गोस्वामी फिर कहते हैं तस्मै नमो व्रज जनैः सह चक्र आत्मनात्मने अहो पश्यत शैलोत्सव रूपिणोनुग्रहं यथात्। तो अब श्री कृष्ण ने जब देखा कि गोवर्धन अब संतुष्ट हो गए हैं, तो उन्होंने सारे ब्रजवासियों से कहा कि हमें अभी गोवर्धन को प्रणाम करना चाहिए। तस्मै नमो ब्रज जनैः सह चक्र आत्मन आत्मने, तो भगवान श्री कृष्ण ने आत्मना आत्मने अपने आप को ही नमस्कार किया। जो ग्वाल बाल कृष्ण थे उन्होंने गोवर्धन कृष्ण को नमस्कार किया। सारे ब्रजवासियों ने अपने हाथ जो जोड़े हुए थे अपने सर के ऊपर ऐसे रखे, नमो 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 गोवर्धन, नमो गोवर्धन आय। तो गोवर्धन देव को नमस्कार उन्होंने किया। तो श्री कृष्ण को ही नमस्कार कर रहे थे और फिर कहने लगे, अहो पश्यत शैलोत्सव रूपिणो अनुग्रहम व्यधात। देखो देखो हे ब्रजवासीगण, इस गोवर्धन ने हम सब के ऊपर कितनी कृपा की है, अनुग्रह किया है, इसलिए वो हमारे सामने इस प्रकार से प्रकट हुए हैं। तो आओ देखो देखो अभी गोवर्धन को प्रणाम करो। तो सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन को प्रणाम किया। गोवर्धन पूजा जब मनाई गई तो ठीक उस आधार पर गर्ग संहिता में बताया जाता है कि गोवर्धन की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। गोवर्धन जाना चाहिए, गोवर्धन पर्वत के पास में कोई एक जगह ढूंढनी चाहिए, उस जगह को पहले स्वच्छ कर लेना चाहिए, साफ करने के बाद फिर वहां गोबर का लेप लगाना चाहिए और बड़े शुद्ध हृदय से जो भी सामग्री गोवर्धन की उपासना के लिए आवश्यक है वो वहां पे रखना चाहिए। और फिर जो विद्वान वैष्णव हैं, ब्राह्मण हैं, उनसे निवेदन करना चाहिए कि यहाँ बैठकर पास में वो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करें, कुछ अच्छे अच्छे स्तोत्र या मंत्र भगवान की प्रशंसा में कहें और फिर गंगा जल, यमुना जल इत्यादि वो अर्पण करें और फिर गोवर्धन का अभिषेक करें। एक सफेद गाय के दूध से और ऐसे अभिषेक करने के बाद फिर पंचामृत का अभिषेक किया जाए। पंचामृत आप जानते हैं पांच जो अमृत तुल्य वस्तु होते हैं, तो उनसे अभिषेक करके फिर यमुना के जल से अभिषेक किया जाए। तत्पश्चात केसर, कस्तूरी, कर्पूर, चंदन का लेप लगाया जाए गोवर्धन को। उसके बाद बहुत सुगंधित धूप अर्पण किया जाए, फिर अच्छे अच्छे नए वस्त्र अर्पण किए जाएं गोवर्धन को और फिर दीप अर्पण किया जाए और उसके बाद में परिक्रमा या प्रदक्षिणा हो जाए। जब प्रदक्षिणा हो जाती है तो सभी को गोवर्धन को नमस्कार करना चाहिए और फिर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, नमो वृंदावनांकाय तुभ्यं गोलोकमौलिने पूर्ण ब्रह्मात्पत्राय नमो गोवर्धनाय च नमो वृंदावनांकाय तुभ्यं गोलोकमौलिने पूर्ण ब्रह्मात्पत्राय नमो गोवर्धनाय च नमः वृंदावनांकाय गोवर्धनाय च। तो नमो गोवर्धनाय च मतलब हम गोवर्धन का नमन करते हैं जो कि वृंदावनांकाय, जो कि वृंदावन के गोदी में बैठे हैं। तुभ्यं गोलोक मौलिने, आप गोलोक वृंदावन के किरीट हैं। पूर्ण ब्रह्म आतपत्राय, पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के आप छत्री जैसे हैं, उनको छाया देते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण भगवान वालों के साथ जाते थे तो वहां पर तरह तरह के कुफे थे, तरह तरह के वृक्ष थे जिनके नीचे बैठ के कृष्ण ग्वाल बालों के संग तरह तरह की क्रिया करते थे। तो गोवर्धन से शीतल जल मिल जाता था, तरह तरह के अपने आप को सजाने के लिए धातु मिल जाते थे, खाने के लिए फल कंदमूल सब स्वादिष्ट स्वादिष्ट चीजें मिल जाती थी, और बहुत ही रमणीय सुंदर वातावरण में श्री कृष्ण महाराज दोपहर के समय विश्राम भी करते थे, और कभी वर्षा हो जाती तो श्री कृष्ण किसी गुफे में चले जाते, कि ज्यादा गर्मी होती तो एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते। तो इस प्रकार से गोवर्धन भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है। तो ऐसे भगवान या श्री गोवर्धन का नमस्कार करके फिर से तुलसी दल युक्त गंगा जल या जमुना जल अर्पण करना चाहिए, फिर पुष्पांजलि और आरती, और उसके बाद यज्ञ होना चाहिए, और यज्ञ होने के बाद प्रसाद का वितरण होना चाहिए, सभी भक्तों को खिलाना चाहिए। और जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों से कहा था, जितने भी लोग आते हैं सबको खिलाना चाहिए, कोई भेद नहीं करना चाहिए, जाति भेद नहीं, ये भेद नहीं, कोई भेद नहीं, सबको खिलाना चाहिए। तो अगर हम गोवर्धन के पास नहीं जा सकते तो फिर हम गोवर्धन पूजा कैसे कर सकते हैं? तो गर्भ संहिता में कहा गया है कि फिर आप गोबर का एक पर्वत बनाइए, गोबर के पर्वत को सजाइए, उसमें पौधे पत्ते आदि लगा के गोवर्धन का एक छोटा सा पर्वत बना के उसकी पूजा कीजिए, उसकी परिक्रमा कीजिए, और पूरे गोवर्धन की परिक्रमा करने के बराबर है। या तो फिर अगर आपके पास गोवर्धन शिला है तो उस शिला की उपासना इस प्रकार से कीजिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि जब हम गोवर्धन शिला किसी से स्वीकार करते हैं तो हमें उस व्यक्ति को उस गोवर्धन शिला के बराबर जितना उसका वजन है उतना सोना देना चाहिए। तो फिर अगर ऐसे सोना देकर आप गोवर्धन शिला लाए हैं तो फिर ठीक है, गोवर्धन शिला की पूजा इस प्रकार से कीजिए। वैसे गोवर्धन शिला गोवर्धन ही है, तो इसलिए गोवर्धन की पूजा करके फिर सभी को शांत मन से, हर्षित मन से भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। तो जो इस प्रकार से गोवर्धन की पूजा करते हैं वैद्य संहिता के अनुसार, उसे इस भौतिक जगत का पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता है। एक बार गोवर्धन पूजा करना इसका मतलब है कि जो लाभ हमें मिलेगा वो 3 करोड़ 3 स्थानों में जाने से अधिक है। कितने सारे तीर्थ स्थान हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने स्थानों में हम जा पाएंगे, बस गोवर्धन पूजा बड़े भक्ति भाव से मनाइए तो आपकी 3 करोड़ 3 स्थानों में यात्रा हो गई एक गोवर्धन पूजा से। और जो व्यक्ति ऐसे भक्ति भाव से करता है उसके लिए गोवर्धन के पास, गोवर्धन के निकट निवास निश्चित है। निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम्। गोवर्धन से प्रार्थना की है, गोवर्धन आपके निकट ही हमें निवास प्रदान कीजिए। वैसे गोवर्धन शिला की उपासना ज्यादा कठिन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को गोवर्धन शिला की भेंट दी थी और उन्होंने कहा था कि ये जो गुंजमाला है और यह है गोवर्धन शिला, और ये गुंजमाला जो है ये राधा रानी को, श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है, और ये गोवर्धन शिला है, तो गोवर्धन शिला की उपासना करोगे तो 8 तुलसी मंजरी अर्पण करना, साथ साथ में यमुना जी का जल अर्पण करना, और थोड़ा सा प्रसाद भोजन भोग जो है वो अर्पण करना, इससे गोवर्धन संतुष्ट हो जाते हैं। तो गिरिराज शिला की उपासना इस प्रकार से की जाती है, बड़े भक्ति भाव से गिरिराज शिला की सेवा अनेक भक्त करते हैं। अगर हम नहीं कर सकते तो मन ही मन में हम कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति में कोई भौगोलिक विचार नहीं है। अगर आप गोवर्धन के पास शारीरिक रूप से नहीं जा सकते तो मन में तो कम से कम आप अवश्य जा पाएंगे। इस प्रकार से गोवर्धन पूजा समाप्त होने के बाद जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में कहते हैं कि हमें गौओं की पूजा करनी चाहिए जैसे ब्रजवासियों ने की थी। समस्त गायों को सजाना चाहिए अलग अलग अलंकार से, अलग अलग आभूषणों से, अच्छे नए वस्त्र पहनाने चाहिए और मंगलमय वस्तुओं से उनको सुशोभित करना चाहिए, फिर माला आदि पहनाना चाहिए, फिर उनकी आरती उतारनी चाहिए और गायों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। साथ साथ गौ क्रीड़ा भी होता है। और जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि अगर आपके पास अनेक गाय नहीं है या अनेक गाय होते हुए भी सबकी उपासना इस प्रकार से करना अगर संभव नहीं है तो ठीक है, एक गाय की कीजिए। एक गाय की उपासना ऐसे करेंगे तो यह समझा जाएगा कि समस्त गायों की उपासना आपने कर ली। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो क्रम दिया है उनको बताते समय उस प्रकार से ब्रजवासियों ने किया। कई जगह यह भी बताया जाता है कि परिक्रमा बाद में हुई, ये उपासना पहले हुई। खैर, लेकिन गोपाल चंपू में भी श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि जब गोवर्धन की परिक्रमा हुई तो वातावरण बहुत ही हर्ष से भरा हुआ था। सबसे पहले गाय थे, गाय और बैल सामने परिक्रमा कर रहे थे, गायों ने भी गोवर्धन की परिक्रमा कर ली। उसके पीछे ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे और उनके पीछे सारे अन्य ब्रजवासी अपने अपने स्थान के अनुसार सभी परिक्रमा में चल रहे थे। और ब्राह्मण वो तरह तरह के मंगलमय मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, गोपियां वो भी कृष्ण का गुणगान कर रही थी। और गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस प्रकार के वो कविताएं या गाने गाते थे जो कि वहां के कवि की कवि रचना करते थे। प्रश्न कोई पूछता था, गिरि पूजयम विहित के न, इसका मतलब है कि गिरि पूजयम, गिरि मतलब गोवर्धन पर्वत, पूजयम विहित के न, गिरिराज गोवर्धन की पूजा किसने की, तो कोई पूछेगा तो कोई उत्तर देगा, अर्चि शक्र पदम अभयम येन, उसने जिसने कि इंद्रदेव को अपने पद से निकालने में कोई भय नहीं दिखाया। मतलब किसने? भगवान कृष्ण। फिर से दोबारा दूसरे गोप गोपी पूछते, गिरि पूजयम विहित केन, कि गोवर्धन की पूजा किसने की, तो वो फिर जवाब देता, पूतना का वध जिसने किया उसने गोवर्धन की पूजा की। फिर से कोई पूछता, गिरि पूजयम विहित केन, गोवर्धन की पूजा किसने की, तो जवाब आता, तृणावत तनु दलनम येन, तृणावत का वध जिसने किया उसने गोवर्धन की पूजा की। फिर से कोई पूछता, गिरि पूजयम विहित केन, गिरिराज गोवर्धन की पूजा किसने की, कालिया दमनम कलितम येन, कालिया दमन जिसने किया उसी ने गोवर्धन की पूजा की। इस प्रकार से गोप गोपियां गीत गाते गाते कृष्ण का गुणगान करते करते बस चलते गए, जो लोग चल नहीं पाए वो बैलगाड़ी में बैठे। इस प्रकार से परिक्रमा करते करते सब लोग चले जा रहे थे। बीच बीच में कभी कभी श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। श्री कृष्ण की बांसुरी की नाद को सुनकर सारे ब्रजवासियों का थकान बिल्कुल दूर हो जाता था, पूरे मोहित हो जाते थे। फिर ऐसे परिक्रमा तरह तरह जगह जगह जहां भी नंद महाराज जाते और गोपगण जाते, जहां ब्राह्मणों को मिलते वहां दक्षिणा दे देते। इतना हर्ष, इतना आनंद उस उत्सव में सबको मिला कि आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर कहते हैं कि कल्पना करना मुश्किल है कि इतने छोटे से आत्मा में इतना आनंद हो सकता है। आत्मा तो है इतनी छोटी, पर जो आनंद गोपियों को और भोगों को उस दिन गोवर्धन पूजा के दिन हो रहा था वो इतना अधिक था कि कल्पना से बाहर है। सभी लोग दिव्य आनंद के समुद्र के लहरों में बस बहे जा रहे थे कृष्ण का गुणगान करते करते। कभी कभी हमारे भक्त लोग भी कीर्तन करते समय ज्यादा ही बह जाते हैं, इसलिए कीर्तन भूमि के बजाय युद्ध भूमि हो जाती है, किसी को चोट पहुंच जाता है, किसी चोट लग जाता है। युद्ध भूमि नहीं है, कीर्तन भूमि है, इसलिए बड़े हर्ष से उल्लास से कीर्तन करना चाहिए, परंतु थोड़े ध्यान से, जैसे गौरांग महाप्रभु ने सिखलाया है उस प्रकार से हमें कीर्तन करना चाहिए, उत्सव में शामिल होना चाहिए। तो ये नाम संकीर्तन और कृष्ण कथा, भगवान कृष्ण का गुणगान, ये हर एक उत्सव का प्राण है, हर एक उत्सव की आत्मा है। इस प्रकार से सुंदर उत्सव समाप्त हुआ। भगवान ने सबके लिए एक अनमोल अवसर प्रदान किया कि चलो ये गोवर्धन का स्मरण करते सारे भक्तों को दिव्य आनंद प्राप्त हो। तो जब अगली बार गोवर्धन की पूजा होगी तो इस कथा को आप याद करिए। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एष एष अवजनातो मत्यान कामरूपी वनौकसः हन्ति यस्मै नमस्यामः शर्मणेयापनो गवाम। ये जो फिर भगवान बोल रहे हैं कि एष अवजानन्तः मत्यान, ये जो यहाँ मर्त्यलोक के निवासी है या जो मनुष्य हैं, अगर अवजनातः अगर वो अनादर करते हैं कामरूपी वनौकसः, तो ये इस गोवर्धन पर्वत का जो अनादर करता है जो मनुष्य, ये गोवर्धन जो कि कामरूपी है अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सकता है, हन्ति ही अस्मै नमस्यामः, हन्ति ही अस्मै, तो हन्ति अवश्य उसकी हत्या करेगा। इसलिए नमस्यामः, इसलिए आइए हम प्रणाम करते हैं इस गोवर्धन को कि वो हमारी रक्षा करे। किस प्रकार के वो रूप धारण कर सकता है, चाहे तरह तरह के रूप धारण कर सकते हैं, जैसे कि कभी बिच्छू के रूप, कभी सांप के रूप, कभी कुछ ऐसे तरह तरह के रूप धारण करके वो लोगों की हत्या कर सकते हैं। लेकिन ये गोवर्धन हमारा पालक है, हमारा सर्वस्व है, तो आइए नमस्यामः, हम सब गोवर्धन की उपासना करते हैं। और शर्मणे आत्मनो गवाम, ताकि वो हमें और हमारे गवों को सुरक्षित रखें। श्रीधर स्वामी जो श्रीमद् भागवत के आदि टीकाकार हैं, वो बताते हैं कि श्री कृष्ण ने व्रजवासियों को छह प्रकार के तर्क सामने रखे थे, झूठे तर्क। इस श्लोक के तात्पर्य में वो बताते हैं, पहला ये है कि व्यक्ति का कर्म ही पर्याप्त है किसी व्यक्ति के भविष्य को निर्धारित करने के लिए। दूसरा कि जो हमारा स्वभाव है वही परम है और वही परम नियंता है इस जगत में, हमारा स्वभाव, क्योंकि स्वभाव बद्ध होकर हम तरह तरह के कर्म करते हैं। तीसरी बात कि प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये परम है क्योंकि इनके परस्पर क्रियाओं से ही सारे विविधता आती है, सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं। चौथी बात कि भगवान हैं, अगर हैं भी तो वो केवल कर्म के सिद्धांत के ऊपर या कर्म के करने वाले के ऊपर निर्भर होते हैं। और फिर छठी और पांचवी बात कि इसलिए भगवान श्री कृष्ण कर्म सिद्धांत के अधीन है। और अंतिम बात श्रीधर स्वामी कहते हैं, कि हमारे जो निहित कार्य होते हैं, हमारे कर्तव्य होते हैं जीवन में हमारे वर्ण के अनुसार, वही हमारे पूजनीय देव होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सारे तर्क इसलिए नहीं प्रस्तुत किए कि वो इनमें विश्वास करते थे, केवल इसलिए कि ये न किए प्रकार न वो इन ब्रजवासियों को इंद्रदेव की यज्ञ से रोकना चाहते थे। और क्योंकि ब्रजवासीगण इतना प्रेम करते थे श्री कृष्ण से, इसलिए उन्होंने आसानी से मान ली बात। आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इति अद्रि गो द्विजमखम वासुदेव प्रचोदिता यथा विधायते गोपा सह कृष्ण व्रजम ययुहु। इति मतलब इस प्रकार से, अद्रि मतलब गोवर्धन, गो मतलब गाय, द्विज मतलब ब्राह्मण, तो गोवर्धन गाय और ब्राह्मणों के संतुष्टि के लिए जब ये मखह, जब ये यज्ञ संपन्न हो गया, ये पूजा हो गई, वासुदेव प्रचोदित कि जिस प्रकार से भगवान वासुदेव ने कहा था उस प्रकार से, यथा विधाय ते गोपा, तो गोपो ने ठीक उसी प्रकार से जब ये सब कुछ संपन्न कर लिया, सह कृष्ण व्रजम ययुहु, फिर गोपगण श्री कृष्ण को लेकर वापस वृंदावन लौट के चले गए। इस प्रकार से सभी ब्रजवासी गण बड़े आनंदित अवस्था में घर चले गए। जैसे कभी कभी मंदिर में भी अगर बहुत सुंदर उत्सव होता है, जैसे जन्माष्टमी होता है या रथ यात्रा होता है, तो भक्त लोगों को बहुत आनंद आता है, बहुत सेवा करते हैं, कीर्तन करते हैं, और फिर रात को आनंदित होकर चले जाते हैं। लेकिन कभी कभी अन्य जो लोग होते हैं, वो बता रहे इतने जोर से कीर्तन कर रहे हैं, ये करें वो, थोड़े नाराज हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से ब्रजवासी गण बड़े आनंदित अवस्था में अपने गांव में वापस चले गए। लेकिन जब चले गए वो तो हर्षित थे, लेकिन एक व्यक्ति खुशी नहीं थे। कौन थे वो? इंद्र। उनको वहां देवलोक बैठ के बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया उनको, और क्रोध के मारे फिर उन्होंने क्या किया वो हम आगे चल के देखते हैं। ये अगले अध्याय का विषय है।
वो है क्या लेकिन कितने वासन प्रार्थना अंदर होंगे
समय है।
तो हम गाए,
अभी हम ये गाएंगे रघुनाथ दास गोस्वामी विरचित श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम। सबके लिए तो पर्याप्त नहीं है, लेकिन जितना है वो आप बांट लीजिए, तो दो या तीन भक्तों के बीच में एक कागज लीजिए, थोड़े इस तरफ थोड़े इस तरफ, जरा बांट लीजिए, चार पांच वहां कई भक्त हैं जिनके पास नहीं है। हरे कृष्णा तो आपको मिल गया है ना। तो सबसे पहले हम अंतिम लाइन गाएंगे, निज निकट निवासम देही गोवर्धन त्वम। वास्तव में निवास के बाद म होना चाहिए, म निवासम होना चाहिए। तो जब आप गाएंगे तो ऐसे कही कि निज निकट निवासम देही गोवर्धन त्वम। निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। जपत भुज गंड क्षत्र भाव प्रपत्य प्रतिहत मध भ्रष्ट गंड देवेंद्र गर्व अतुल पृथुद शैल श्रेणी भूप निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। प्रमद प्रमदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयतु नवयूनो द्वन्द्वमस्मिन्न मन्दम्। इति किल करनाथं लग्नकस्तत्त्वयोने निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। अनुपम मणि वेदे रत्न सिंहासनोदि रुहशरदरस्तानो द्रोणिकन्धे सुरङ्गये सहकर सखी सङ्केलयन् सप्रियम् निज निकटनिवासं देहि गोवर्धन त्वम्। निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। रसनिधि नवयूनो साक्षिणीं दानकेले ज्योति परिमल विष्ठां श्याम वेदीं प्रकाश रसुकवर पुराणां मोदमान् पालयन् निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। निज निकट निवासं देहि गोवर्धन त्वम्। हरिदाय तम पूर्वं राधिका कुन्दमात्मा
Thank you. Go!
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram.
तट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वम् गोवर्धनत्वम् गोवर्धनत्वम्
छुपा देना, क्या मुगल भी भगवान की लीला में सहयोग दे रहे थे? हाँ, सहयोग दे रहे थे, परंतु अनजाने में। उनको नहीं मालूम था कि वो सहायता कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, कोई जानते हुए कर रहा है, कोई बिना जाने कर रहा है। जो जानते हुए करते हैं वो श्री कृष्ण की सेवा प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो भगवान की माया की सेवा करते हैं। माया की सेवा भी माया भगवान की ही सेवा है, लेकिन गलत ढंग से किया जा रहा है, वो जबरदस्ती किया जा रहा है, और अनजाने में कभी कभी भगवान की लीलाएं भी ऐसे हो जाती हैं। जो लोग श्री गोवर्धन के पर्यावरण को खराब कर रहे हैं, उन्हें कैसे समझाया जा सकता है और वो ऐसा उग्र कर्म क्यों करते हैं? उग्र कर्म करते हैं केवल अज्ञान और लोभ की वजह से। तो उनको समझा के, इस भागवत के सिद्धांत को समझा के उनको ऐसे उग्र कर्म से रोकना चाहिए। कभी कभी सामना भी करना पड़ता है। एक बार कई साल पहले सरकार ने योजना बनाई थी कि गोवर्धन के इलाके से रेल की पटरी चलाए, तो इससे गोवर्धन का एक हिस्सा वो तोड़ने वाले थे। तो फिर एक बाबा थे वहां पर, तो उन्होंने बहुत बड़ा अभियान निकाला और एक क्रांति के समान विरोध हो गया। वो अनेक लोगों को साथ में ले आए, सरकार ने दिल्ली में इधर उधर बहुत कुछ किया, फिर सरकार ने वो बदल दिया। एक उग्र कर्म था, एक रेल की पटरी बनाने के लिए गोवर्धन को तोड़ना, मतलब किस प्रकार का विचार है। तो कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है, क्योंकि कलयुग का समय है, तो धर्म के रक्षा के लिए भी जो क्षत्रिय वृत्ति के लोग होते हैं वो ऐसा भले करें, करना चाहिए। लेकिन सच्चे धर्म की रक्षा होगी जब हम धर्म का पालन करेंगे। हम लोग सब जब अच्छे भक्त बनेंगे और अच्छे भक्त होकर धर्म का प्रचार इस प्रकार से करेंगे, सबको हरि नाम का आश्रय दिलाएंगे, तब वास्तव में कोई ऐसी समस्या आगे चल के नहीं आएगी। हरे कृष्णा। तो आप दर्शन होंगे, थोड़ी सूचनाएं हैं।